एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हमें रोज हंसाता है, गुदगुदाता है, कभी कभी चौंकाता भी है, कॉमेडी।
हाँ, कॉमेडी।
और इस सफर में हमारे गाइड होंगे मैथ्यू बेविस और उनकी किताब कॉमेडी।
नमस्ते। और ये सफर सिर्फ चुटकुलों और हंसी मजाक की गलियों तक ही सीमित नहीं रहेगा।
जैसा आपने कहा,
हाँ,
बेविस हमें दिखाते हैं कि कॉमेडी असल में कितनी गंभीर, कितनी बौद्धिक चीज हो सकती है। ये दुनिया को समझने और उसमें जीने का एक नजरिया है, एक ढंग है।
बिल्कुल। और आज के इस दौर में जहाँ चीजें इतनी उलझी हुई हैं, शायद कॉमेडी को समझना और भी जरूरी हो गया है ना?
हाँ, बहुत जरूरी।
ये कैसे समाज पर, सत्ता पर, यहाँ तक कि हमारे अपने वजूद पर टिप्पणी करती है। उम्मीद है आज की ये बातचीत कॉमेडी को लेकर हमारी सोच को थोड़ा और विस्तार देगी।
तो पहले बात करते हैं इस नजरिए को देने वाले लेखक की, मैथ्यू बेविस।
हाँ, लेखक के बारे में थोड़ा बताइए।
ये ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर हैं और इनका काम खास तौर पर 19वीं और 20वीं सदी के साहित्य पर रहा है।
अच्छा।
और जो बात इन्हें इस विषय के लिए खास बनाती है वो क्या है? मतलब वो कोई कॉमेडियन तो है नहीं,
नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं कोई मनोवैज्ञानिक।
वो एक साहित्यिक आलोचक और विचारक है। उनका नजरिया दार्शनिक है, फिलोसॉफिकल है। वो कॉमेडी को पश्चिमी विचार के एक बहुत लंबे इतिहास के संदर्भ में देखते हैं, मतलब प्लेटो के जमाने से लेकर आज के स्टैंड अप कॉमेडियंस तक, सब कुछ जोड़ते हुए।
वाह, ये तो काफी बड़ा कैनवस है।
हाँ, और उनकी खूबी ये है कि वो बहुत गहरे और जटिल विचारों को भी बड़ी आसानी से, मतलब पढ़ने लायक अंदाज में समझाते हैं।
अच्छा।
वो साहित्य, दर्शन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, इन सबको मिला के कॉमेडी को देखते हैं। तो ये किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि कॉमेडी क्या है, बल्कि ये सोचने पर मजबूर करती है कि कॉमेडी करती क्या है, उसका फंक्शन क्या है।
दिलचस्प। तो चलिए किताब के दिल में उतरते हैं फिर। आखिर ये किताब कहना क्या चाहती है? इसका निचोड़ क्या है? क्या है इसका सार?
देखिए, इसका सबसे बड़ा दावा, या कहें केंद्रीय तर्क, ये है कि कॉमेडी महज मनोरंजन या तनाव कम करने का जरिया नहीं है।
ओके।
बेविस इसे आलोचनात्मक सोच का एक गहरा तरीका और दुनिया में जीने का एक दार्शनिक ढंग मानते हैं।
दार्शनिक ढंग।
हाँ, ये उन सच्चाइयों से पर्दा उठाती है जिनसे हम अक्सर नजरें चुराते हैं। जैसे हम सब शरीर की सीमाओं में बंधे हैं, हमें समाज की चिंताएं सताती हैं, हम बेवकूफियां करते हैं, और हाँ, हम सब एक दिन मर जाएंगे। मतलब ये जो असहज करने वाली सच्चाइयां हैं।
यानी हंसाते हंसाते हमें आईना भी लिखाती है और उन चीजों पर सोचने को मजबूर करती हैं जिन पर हम शायद गंभीर होकर बात ना कर पाए।
बिल्कुल। बेफिजूल तर्क ही देते हैं कि कॉमेडी उन विरोधाभासों, असफलताओं और कमियों को गले लगाती है जिनसे ट्रेजेडी मुंह मोड़ लेती है। ये हमें सिखाती है कि गिरना अंत नहीं है, बल्कि जिंदगी का हिस्सा है। ये लचीलेपन और साथ मिलकर जीने का एक तरीका सुझाती है। ये पूछती है क्या चीज मजेदार है, से ज्यादा जरूरी सवाल है ये कॉमेडी आखिर कर क्या रही है, उसका असर क्या है।
तो ये किताब पाठक को कहाँ ले जाती है, किन पड़ावों से गुजरती है, क्या है इसका स्ट्रक्चर?
ये सबसे पहले तो कॉमेडी के बारे में हमारी बनी बनाई धारणाओं को तोड़ती है, चैलेंज करती है।
अच्छा।
फिर ये हंसी के पीछे के सिद्धांतों को खंगालती है। हम हंसते क्यों हैं? क्या हम दूसरों से बेहतर महसूस करते हैं, या किसी बेतुकी बात पर चौंकते हैं, या फिर हमारे अंदर दबा कोई तनाव बाहर निकलता है?
हाँ, ये सवाल तो मन में आते हैं।
बिल्कुल। इसके बाद ये कॉमेडी के अलग अलग रूपों, जैसे व्यंग्य, पैरोडी, फार्स, रोमांटिक कॉमेडी, यहाँ तक कि ब्लैक कॉमेडी का विश्लेषण करती है, और फिर इसे हमारे शरीर और समाज से जोड़ती है।
और अंत में पाठक क्या सीख लेकर निकलता है, मतलब क्या है टेक अवे?
देखिए, बेविस चाहते हैं कि हम कॉमेडी को जिंदगी से भागने का रास्ता न समझें, बल्कि जिंदगी जीने का एक तरीका समझें।
जीने का तरीका।
हाँ, एक ऐसा तरीका जो गलतियों, कमियों और हार के साथ जीना सिखाता है। ये परफेक्शन की तलाश नहीं, बल्कि जैसे तैसे काम चलाते हुए आगे बढ़ते रहने का फलसफा है, वो जिसे अंग्रेजी में मॉडलिंग थ्रू कहते हैं।
मॉडलिंग थ्रू, ये दिलचस्प है। तो चलिए इस किताब की परतों को थोड़ा और खोलते हैं। पहला कदम है कॉमेडी को गंभीरता से लेना।
हाँ,
ये सुनने में ही थोड़ा विरोधाभासी लगता है, कॉमेडी और गंभीरता।
हाँ, और यही बेविस का पहला मुद्दा है। पहला अध्याय कॉमेडी को गंभीरता से लेना इसी आम धारणा को चुनौती देता है कि कॉमेडी कोई हल्की फुल्की फालतू चीज है।
राइट।
बेविस कहते हैं कि कॉमेडी को परिभाषित करना बहुत मुश्किल है और शायद यही इसकी ताकत है। मतलब जैसे ही आप इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं ये फिसल जाती है।
सही कहा। तो परिभाषा खोजने के बजाय बेविस क्या सुझाव देते हैं, क्या करें फिर?
वो कहते हैं कि इसे सोच का एक रूप और जानने का एक तरीका समझो। परिभाषा मत ढूंढो, समझो कि ये काम कैसे करती है। वो ये भी बताते हैं कि इतिहास में बड़े बड़े विचारक, प्लेटो से लेकर कांट, फ्रॉयड तक, कॉमेडी को शक की नज़र से क्यों देखते आए हैं। इसे अक्सर तर्कहीन, असभ्य, यहां तक कि क्रूर भी माना गया।
दिलचस्प। इसके बाद बेविस हंसी के सिद्धांतों पर आते हैं। हम हंसते क्यों हैं, इस पर अलग अलग विचार हैं, है ना? कई थ्योरीज हैं।
बिल्कुल। दूसरे अध्याय में बेविस तीन मुख्य सिद्धांतों की बात करते हैं, लेकिन वो इन्हें एक दूसरे का दुश्मन नहीं बल्कि अलग अलग नजरिए मानते हैं जो हमें कॉमेडी समझने में मदद करते हैं।
अच्छा, तो कौन से हैं वो तीन सिद्धांत?
पहला है श्रेष्ठता सिद्धांत, सुपीरियोरिटी थियरी, जिसे प्लेटो और हॉब्स जैसे विचारकों से जोड़ा जाता है। इसके मुताबिक हम दूसरों की कमजोरी, बेवकूफ़ी या बदकिस्मती पर इसलिए हंसते हैं क्योंकि अचानक हमें अपनी श्रेष्ठता का एहसास होता है। ये सिद्धांत हमें व्यंग्य समझने में मदद करता है। जब हम ताकतवर लोगों की गलतियों पर हंसते हैं तो शायद हमें थोड़ी श्रेष्ठता महसूस होती है।
अच्छा, तो जब हम किसी नेता के कार्टून पर हंसते हैं या किसी मीम पर, तो कहीं ना कहीं ये श्रेष्ठता वाला भाव काम कर रहा होता है।
हाँ, शायद कुछ हद तक। बेविस यही कहते हैं कि ये एक पहलू है। दूसरा सिद्धांत है असंगति सिद्धांत, इनकॉन्ग्रुइटी थ्योरी।
असंगति?
हाँ,
मतलब इनकॉन्ग्रुइटी।
हाँ, इनकॉन्ग्रुइटी। इसे कांट और शोपेनहावर से जोड़ा जाता है। यहाँ हंसी तब आती है जब हमारी उम्मीद और असलियत के बीच अचानक कोई टकराव होता है, कुछ बेतुका हो जाता है।
जैसे कोई उदाहरण?
जैसे किसी चुटकुले का पंचुआइन हमारी सोच को झटका देता है या कोई बिल्कुल अप्रत्याशित बात हो जाती है। ये सिद्धांत हमें बुद्धि वाले मजाक, शब्दों के खेल, पंज और अजीबोगरीब हास्य, सरील ह्यूमर को समझने में मदद करता है।
समझ गया। और तीसरा सिद्धांत?
वो है राहत सिद्धांत, रिलीफ थ्योरी, जिसे स्पेंसर और खासकर फ्रॉयड से जोड़ा जाता है। इसके अनुसार हंसी हमारे अंदर दबी हुई मानसिक या शारीरिक ऊर्जा, जैसे गुस्सा या यौन इच्छा या कोई सामाजिक दबाव को बाहर निकालने का एक जरिया है।
मतलब एक तरह का कैथार्सिस?
हाँ, बिल्कुल। फ्रॉयड मानते थे कि चुटकुलों के जरिए हम उन बातों को कह पाते हैं जो समाज में सीधे तौर पर कहना मना है, वर्जित है। ये सिद्धांत हमें वर्जित विषयों पर होने वाले मजाक या नॉनसेंस ह्यूमर को समझने में मदद करता है और ये भी बताता है कि हंसने के बाद हमें हल्का क्यों महसूस होता है, जैसे कोई टेंशन रिलीज हो गया हो।
तो क्या असल जिंदगी में ये सब मिले जुले होते हैं? मतलब एक ही चीज पर हंसते हुए ये तीनों सिद्धांत लागू हो सकते हैं?
बिल्कुल। बेविस यही कहना है कि कोई एक सिद्धांत कॉमेडी की पूरी तस्वीर नहीं दे सकता। ये अलग अलग लेंस हैं देखने के। एक ही मजाक में शायद श्रेष्ठता का भाव भी हो, थोड़ी असंगति भी हो और थोड़ा तनाव भी कम हो रहा हो।
ठीक है, तो इन सिद्धांतों के बाद बेविस कॉमेडी के अलग अलग रूपों की बात करते हैं, जैसे व्यंग्य, पैरोडी।
हाँ, तीसरे अध्याय में वो कॉमेडी के विभिन्न रूपों या जॉनरे पर आते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ये कोई पक्के खांचे नहीं हैं, बल्कि अलग अलग तरीके हैं जिनसे कॉमेडी खुद को जाहिर करती है और ये अक्सर आपस में घुलते मिलते रहते हैं। जैसे व्यंग्य सटायर है, जिसका मकसद सुधार लाना होता है। ये समाज या व्यक्ति की बुराई, बेवकूफ़ी या भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए बुद्धि, विडंबना और मजाक का इस्तेमाल करता है।
हाँ, जैसा आजकल बहुत सारे कॉमेडी शो करते हैं।
बिल्कुल। प्राचीन रोम के व्यंग्यकारों से लेकर जोनाथन स्विफ्ट और जैसा आपने कहा आज के राजनीतिक कार्टून या स्टैंड अप एक्ट्स, ये सब इसके उदाहरण हैं। ये सत्ता को सच बताने की एक कोशिश है।
पैरोडी है जो किसी जानी पहचानी चीज की नकल उड़ाती है।
हाँ, किसी स्टाइल की, किसी काम की। और फार्स है जिसमें भाग दौड़, ऊटपटांग स्थितियां और शारीरिक हास्य ज्यादा होता है। इसे अक्सर हल्का मान लिया जाता है।
हाँ, जैसे बस गिरना पड़ना ही हो।
लेकिन बेविस कहते हैं कि फार्स भी हमें हमारे शरीर, समाज के नियमों और गड़बड़ी या अराजकता के डर के बारे में बहुत कुछ बताता है। फिर रोमांटिक कॉमेडी है।
हाँ, रोम कॉम।
हाँ, जिसका एक जाना पहचाना ढांचा होता है, मिलना, मुश्किलें और आखिर में शादी। बेविस इसे सिर्फ हल्की फुल्की कहानी नहीं मानते बल्कि एक सामाजिक संदेश मानते हैं, समुदाय का बनना, समझौता करना और समाज का आगे बढ़ना। शेक्सपियर की कॉमेडीज बेहतरीन उदाहरण हैं।
और एक और रूप है जो आजकल काफी दिखता है, ब्लैक कॉमेडी या ट्रेजिक कॉमेडी। ये थोड़ा डार्क होता है।
हाँ, ये कॉमेडी और त्रासदी के बीच की धुंधली जमीन पर चलती है। ये मौत, बीमारी, युद्ध जैसे मुश्किल या वर्जित समझे जाने वाले विषयों में हंसी ढूंढती है। सैमुअल बेकेट के नाटक इसके क्लासिक उदाहरण हैं।
तो इसका मकसद क्या होता है?
शायद ये हमें जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों का सामना करने और उन पर हंसकर उन्हें सहने लायक बनाने में मदद करती है, एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म।
इसके बाद बेवेस एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर आते हैं, कॉमेडी और हमारा शरीर, ये कनेक्शन क्या है? त्रासदी तो अक्सर आत्मा या मन की बात करती हैं।
और कॉमेडी शरीर की? बिल्कुल, चौथा अध्याय यही कहता है। बेविस का तर्क है कि कॉमेडी हमें बार बार याद दिलाती है कि हम सिर्फ ऊंचे आदर्शों वाले प्राणी नहीं हैं, बल्कि मांस खून के पुतले हैं,
हाड़ मांस के इंसान।
हाँ, जो गलतियां करते हैं, जिन्हें भूख लगती है, जो बीमार पड़ते हैं और मरते हैं। इसमें स्लैपस्टिक आता है, चार्ली चैपलिन या बस्टर कीटन का गिरना पड़ना या कार्टूनों का पिटना। ये हमारे शरीर की कमजोरी और फिर भी टिके रहने की क्षमता, रेजिलियंस दिखाता है।
और वो कार्निवलिस्क वाला विचार भी इसी से जुड़ा है, वो बख्तिन वाला।
बिल्कुल, ये रूसी विचारक मिखाइल बख्तिन का सिद्धांत है। ये एक तरह का उत्सवी माहौल है, जैसे पुराने जमाने के कार्निवल या शायद कुछ हद तक हमारी होली।
हाँ, होली सही का,
जहाँ समाज के नियम कायदे थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, जहाँ शरीर की निचली समझी जाने वाली क्रियाओं, खाना पीना, मलत्याग, सेक्स का खुलकर प्रदर्शन होता है, उनका जश्न मनाया जाता है, पद और गरिमा का मजाक उड़ाया जाता है। ये जिंदगी और उसके नवीनीकरण का उत्सव है, हायरार्की उलट जाती है।
यानी कॉमेडी हमें हमारी शारीरिक हकीकत से, हमारी भौतिकता से जोड़े रखती है, उसे छिपाती नहीं।
हाँ, और ये सेक्स और इच्छाओं को भी पाप की नज़र से नहीं, बल्कि जिंदगी की एक ताकतवर, कभी कभी मजाकिया लगने वाली सच्चाई के तौर पर देखती है। यहाँ तक कि बीमारी और मौत जैसे विषयों पर भी कॉमेडी हंसी का इस्तेमाल करती है, शायद हमारी चिंता कम करने के लिए, भयानक को बेतुका बनाकर उसे काबू में करने के लिए।
शरीर के बाद समाज।
कॉमेडी का समाज से क्या रिश्ता है? पांचवा अध्याय इसी पर है
शायद।
जी हाँ, यहाँ बेविस कॉमेडी के दोहरे, बल्कि कहूँ तो विरोधाभासी सामाजिक काम की बात करते हैं। देखिए, हंसी शायद ही कभी अकेले में आती है, ये लोगों को जोड़ती है।
हाँ, ये तो है।
लेकिन ये जुड़ाव अलग अलग मकसदों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। एक तरफ कॉमेडी व्यवस्था बनाए रखने का काम कर सकती है, ये सामाजिक नियमों को लागू करती है, जो लोग लीक से हटकर चलते हैं उनका मजाक उड़ाकर उन्हें रास्ते पर लाती है।
अच्छा, मतलब एक तरह का सोशल कंट्रोल।
हाँ, हेनरी बर्गसन का यही विचार था। ये वो हंसी है जो बताती है कि हम कौन हैं और वो कौन है जो हमारे जैसे नहीं। ये समूहों को मजबूत करती है, भले ही किसी को बाहर करके। ये एक तरह से बाउंड्री बनाती है।
तो ये तलवार की धार जैसी है, जोड़ भी सकती है, काट भी सकती है।
ये तो खतरनाक भी हो सकती है। बिल्कुल सही का। इसीलिए दूसरी तरफ कॉमेडी व्यवस्था को चुनौती देने का एक शक्तिशाली हथियार भी हो सकती है। ये असहमति जताने और समाज की आलोचना करने का जरिया बन सकती है,
जैसे विदूषक।
बिल्कुल, व्यंग्य सत्ता पर सवाल उठाता है, पाखंड को उजागर करता है। जैसे पुराने जमाने में दरबार का विदूषक ही शायद वो अकेला शख्स था जो राजा की आलोचना कर सकता था, मजाक में ही सही। ये विध्वंसक पहलू कॉमेडी को नए विचारों के लिए जगह बनाने और पुरानी पड़ चुकी चीजों को बदलने की ताकत देता है।
और फिर आता है किताब का निष्कर्ष, जो कॉमिक अंत पर बात करता है। त्रासदियों का अंत तो अक्सर मौत या बर्बादी में होता है, लेकिन
पारंपरिक कॉमेडी का अंत उत्सव में होता है, दावत, नाच गाना और सबसे आम तौर पर शादी। विविस कहते हैं कि ये सिर्फ हैप्पी एंडिंग का फॉर्मूला नहीं है, ये एक गहरा दार्शनिक बयान है।
दार्शनिक बयान? शादी कैसे?
हाँ, शादी यहाँ सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि सुलह का, एक नए समाज के बनने का और जिंदगी के आगे बढ़ते रहने का प्रतीक है, कंटिन्यूएशन का।
यानी ये व्यक्ति की अकेली लड़ाई या हीरोइज्म के बजाय समाज और साथ मिलकर चलने को ज्यादा महत्व देती है।
हाँ, ये समझौता करना, माफ करना और एक ऐसी दुनिया को स्वीकार करना सिखाती है जो शायद परफेक्ट नहीं है, लेकिन जिसमें जिया जा सकता है। ये जिंदगी के पक्ष में वोट है, अपनी पूरी गड़बड़ियों, जटिलताओं और जारी रहने वाली हकीकत के साथ।
तो बेविस का निष्कर्ष यह है कि कॉमिक नजरिया असल में लचीलेपन का नजरिया है, रेजिलियंस का।
बिल्कुल, ये हमें शान से मरना नहीं सिखाता, बल्कि ये सिखाता है कि कैसे जीते रहना है, मुश्किलों से जूझते हुए कैसे आगे बढ़ना है, मडल थ्रू करना है, और इंसान होने की इस रोजमर्रा के संघर्ष में कैसे मायने खोजने हैं।
वाह, ये तो काफी गहरी बातें हैं कॉमेडी के बारे में। तो इस पूरी दिलचस्प बातचीत से कौन सी मुख्य बातें हैं जो श्रोताओं को याद रखनी चाहिए, क्या हैं की टेकअवेज?
पहली और शायद सबसे जरूरी बात जो ये किताब तोड़ती है वो धारणा कॉमेडी सिर्फ हंसी ठट्ठा या मनोरंजन में ही, ये दुनिया को देखने और समझने का एक गंभीर दार्शनिक नजरिया है।
हाँ, जैसे हमारे यहाँ कबीर के दोहे या तेनालीराम की कहानियां वो सिर्फ हंसाती नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करती हैं, व्यवस्था पर चोट करती हैं।
बिल्कुल। दूसरी बात, कॉमेडी को किसी एक खांचे या सिद्धांत में बांधना नामुमकिन है। श्रेष्ठता, असंगति, राहत, ये सब अलग अलग पहलू दिखाते हैं और असल जिंदगी में अक्सर सब मिले जुले होते हैं।
हाँ, जब हम दोस्तों के साथ किसी मुश्किल पर हंसते हैं तो कभी खुद को बेहतर पाते हैं, कभी हालात की बेतुकी पर चौंकते हैं, और कभी बस तनाव हल्का करते हैं। सब कुछ होता है।
सही। तीसरा अहम सबक, शरीर और हमारी भौतिक सच्चाई कॉमेडी के दिल में है। ये हमें लगातार याद दिलाती है कि हम सिर्फ सोचने वाले दिमाग नहीं बल्कि शरीर भी हैं, अपनी जरूरतों और कमजोरियों के साथ।
जैसे होली का हुड़दंग हो या शादी की रस्मों में होने वाला मजाक, ये सब इसी शारीरिकता से जुड़े हैं।
चौथा, कॉमेडी समाज में दोहरी भूमिका निभाती है। ये नियम बना भी सकती है और तोड़ भी सकती है। ये एक तरफ समूह को एकजुट कर सकती है, अक्सर किसी को बाहर करके, तो दूसरी तरफ सत्ता और स्थापित विचारों पर सवाल भी उठा सकती है।
जैसे चुनाव के समय कार्टून नेताओं पर कटाक्ष करते हैं।
हाँ।
या समाज भी कई बार किसी बुरी रस्म पर हंसकर उसे बदलने की ओर बढ़ता है।
बिल्कुल। और पांचवी, जो मुझे बहुत जरूरी लगती है, कॉमेडी हार, कमी और अपूर्णता को स्वीकार करती है। ये त्रासदी की तरह गिरने को अंत नहीं मानती। ये सिखाती है कि गिरकर उठना, काम चलाते रहना, मडलिंग थ्रू करना, यही जिंदगी है।
रोज की छोटी मोटी गड़बड़ियों पर हंसकर आगे बढ़ जाना, यही कॉमिक रवैया है।
हाँ, बिल्कुल।
बिविस की किताब ऐसे कई विचारों से भरी है जो दिमाग में अटक जाते हैं।
हाँ।
चलिए कुछ ऐसे ही मुख्य विचारों या कह लें कि यादगार पंक्तियों पर गौर करते हैं जो किताब के सार को पकड़ते हैं। ये सीधे उद्धरण नहीं बल्कि उनके मूल विचारों का निचोड़ है।
जरूर। पहला विचार है, हमें कॉमेडी से कोई सरल परिभाषा मांगना बंद कर देना चाहिए। इसके बजाय हमें इसकी जटिलताओं के साथ सोचना सीखना होगा। कॉमेडी कोई सुलझाई जाने वाली पहेली नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है।
मतलब इसकी अस्पष्टता ही इसकी ताकत है। इसे समझने से ज्यादा जीना जरूरी है।
हाँ, एक तरह से। दूसरा विचार, कॉमेडी लगातार हमें शरीर की याद दिलाती है, हमारी भूख, हमारी ठोकरें, हमारी नश्वरता। ये याद दिलाती है कि हमारे ऊंचे आदर्शों के बावजूद हम सबसे पहले हाड़ मांस के प्राणी हैं।
ये कॉमेडी के जमीनी होने पर, उसकी भौतिकता पर जोर देता है, एकदम बेसिक लेवल पे ले आती है।
बिल्कुल। तीसरा विचार, जहां त्रासदी का अंत मौत की अटलता दिखाता है, वहीं पारंपरिक कॉमिक अंत जिंदगी के चलते रहने का भरोसा देता है, अक्सर शादी के जरिए। ये सिर्फ सुखद अंत नहीं बल्कि अकेले व्यक्ति पर समाज को और बहादुरी भरे बलिदान पर जैसे तैसे काम चलाने को तरजीह देना है।
ये कॉमिक अंत के गहरे मतलब को बताता है, समुदाय, निरंतरता, समझौता, अकेले हीरो की जीत नहीं बल्कि सबका साथ में आगे बढ़ना।
सही कहा। और चौथा, जो हंसी किसी को बाहर करती है वही हंसी किसी को शामिल भी करती है। हर कॉमिक समुदाय साझा समझ और साझा अनदेखी की नींव पर बनता है।
ये कॉमेडी के सामाजिक पहलू के विरोधाभास को बहुत खूबसूरती से पकड़ता है। ये जोड़ती भी है और बांटती भी है। ये याद रखने वाली बात है।
तो ये सब जानने के बाद हम रोजमर्रा की जिंदगी में इन विचारों का क्या करें, मतलब इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है?
हाँ, ये जरूरी सवाल है। पहला तो है बेहतर मीडिया साक्षरता। अब जब हम कोई फिल्म, टीवी शो या स्टैंड अप कॉमेडी देखेंगे तो शायद ज्यादा गहराई से सोचेंगे ये हंसी कैसे पैदा की जा रही है, श्रेष्ठता बोध से, असंगति से।
हाँ, और इसका मकसद क्या है, सिर्फ हंसाना या समाज पर कोई टिप्पणी करना या हमारी किसी चिंता को जाहिर करना। हम ज्यादा क्रिटिकल हो सकते हैं।
दूसरा, बेहतर सामाजिक और भावनात्मक समझ। ये जानने के बाद कि हंसी कैसे काम करती है, हम शायद बेहतर समझ पाएंगे कि लोग क्यों हंसते हैं और कब मजाक चोट पहुंचा सकता है।
और मुश्किल हालात में हंसी मजाक का इस्तेमाल ज्यादा समझदारी और संवेदनशीलता से किया जा सकता है, कब मजाक करना है कब नहीं।
तीसरा और शायद सबसे काम का, निजी जीवन में लचीलापन अपनाना, जिसे हम कॉमिक नजरिया कह सकते हैं। अपनी या दूसरों की गलतियों और कमियों को दुनिया का अंत न मानकर उन्हें इंसानी होने का हिस्सा समझना।
हाँ, परफेक्शन के पीछे भागने के बजाय गड़बड़ियों के साथ जीने की कला सीखना, थोड़ा खुद पर भी हंस पाना।
बिल्कुल।
चौथा, ज्यादा असरदार संवाद। व्यंग्य और ताने के फर्क को समझना या अपनी बात को यादगार बनाने के लिए असंगति का रचनात्मक इस्तेमाल करना।
और ये भी याद रखना कि जो मजाक एक ग्रुप को हंसाता है, वो अक्सर किसी और को अलग थलग महसूस करा सकता है। समावेशी माहौल बनाने के लिए ये जागरूकता जरूरी है, कौन हंस रहा है और किस पर हंसा जा रहा है।
और पांचवां, कला और साहित्य को ज्यादा गहराई से सराहा पाना। बेविस की किताब हमें गंभीर रचनाओं में छुपे हास्य को और हास्य रचनाओं में छुपे गंभीर संदेशों को पहचानने में मदद करती है। हाँ, हम शेक्सपियर की कॉमेडीज को सिर्फ प्रेम कहानियां नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था, माफी और नवीनीकरण पर गहरी टिप्पणियों के रूप में देख सकते हैं
जी।
या चार्ली चैपलिन की फिल्मों में सिर्फ स्लैपस्टिक नहीं, बल्कि गहरी सामाजिक आलोचना देख सकते हैं।
इस पूरी बातचीत से मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि हम अक्सर कॉमेडी को बहुत हल्के में लेते हैं, इसे कम आंकते हैं।
हाँ,
ये वाकई इंसान होने के मतलब को, समाज को और खुद को समझने का एक बहुत गंभीर, ताकतवर और लचीला जरिया है।
करेक्ट।
इसे सिर्फ मनोरंजन मानना इसकी असली क्षमता को नजरअंदाज करना है।
और मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगी कि कॉमेडी की जटिलता, उसकी विरोधाभास, उसका किसी परिभाषा में न बंध पाना
जी,
यही उसकी असली ताकत है। ये जिंदगी के उन धुंधले अनिश्चित कोनों को छूती है जहां सख्त विचारधाराएं या साफ सुथरी परिभाषाएं पहुंच नहीं पाती।
सही कहा। तो शायद सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्या ये मजेदार है, बल्कि ये होना चाहिए कि ये कॉमेडी कर क्या रही है, ये हमारे बारे में, हमारे समाज के बारे में क्या कह रही है।
बिल्कुल, ये ज्यादा गहरा सवाल है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।